الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى عز اسمه بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام. صلوات عنایت کیجیے محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی قدر، دین شناسی اور اس کی ہماری زندگی میں اہمیت کے عنوان پر یہ گفتگو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اور یہ ایک مفصل موضوع ہے کہ جس سے متعلق ایک نشست میں گفتگو کرنا واقعاً مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے. البتہ ایک پہلو سے اس پر ایک سرسری سی نگاہ ضرور ڈالی جا سکتی ہے، اور انشاءاللہ اگر آئندہ موقع میسر آیا تو اسی موضوع پر مزید اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جائے گی. جس آیہ کریمہ کو سرنامہ کلام کے طور پر پیش کیا، پروردگار متعال ارشاد فرما رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک پروردگار متعال کے نزدیک، پروردگار متعال کے یہاں اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے. سب سے پہلے اس آیت پر اگر غور کریں تو لفظ دین وہ لفظ ہے کہ جس پر سب سے پہلے ہمیں اپنی انگلی رکھنا ہوگی اور اس لفظ کو سمجھنا ہوگا. اگر یہ آیت ہمارے سامنے لکھی ہوئی ہو کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، تو سب سے پہلے اگر ہم کسی لفظ پر انگلی رکھیں گے اور متوجہ ہوں گے اس لفظ کی جانب کہ یہ لفظ ہے کہ جس کی تشریح کی جانی چاہیے، جس کو بیان کیا جانا چاہیے، وہ لفظ دین ہے. دین کا کیا مطلب ہے، دین کا کیا معنی ہے، تو یہ خود ایک مفصل گفتگو ہے کہ لغت میں دین کا کیا معنی ہے، عرف میں دین کا کیا معنی ہے، اصطلاح میں دین کا کیا معنی ہے. لیکن خلاصتاً اگر اس کو بیان کیا جائے تو یہ ہے کہ دین یعنی کسی قانون کا ہونا، کسی نظام کا ہونا، کسی سسٹم کا ہونا دین کہلاتا ہے. یعنی انسان کسی سسٹم کا پابند ہو، کسی نظام کے تحت اپنی زندگی کو گزار رہا ہو، کوئی قانون ہو کہ جو اس کی زندگی پر حاکم ہو اور وہ قانون بتائے کہ اس انسان نے اپنی زندگی کو کس طرح سے گزارنا ہے، اسے کہا جائے گا دین. اسی لیے یہ ایک دعویٰ ہے اور یہ ایک سچا دعویٰ ہے کہ دنیا میں لا دینیت نام کی کوئی شے نہیں پائی جاتی. دنیا میں ہم بہت سے افراد سے متعلق کہتے ہیں کہ یہ لا دین ہے، ان کا کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی دین نہیں ہے. لیکن حقیقتاً اگر غور کیا جائے اور اس کے ریشے میں جا کے، اس کی جڑوں میں جا کر دیکھا جائے تو دنیا میں لا دینیت نام کی کوئی بھی شے نہیں ہے، کیونکہ لا دینیت خود ایک دین ہے. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں کسی دین کو نہیں مانتا، یعنی اس کے اعمال اور اس کے افعال اور وہ جو انجام دے رہا ہے وہ کسی دین کے پابند نہیں ہے، خود اس کا کسی بھی دین کے پابند نہ ہونا ایک دین ہے. یہ خود ایک نظریہ ہے جس نظریے کی بنیاد پر وہ زندگی گزار رہا ہے. کیونکہ اگر انسان حقیقی معنی میں لا دین ہو جائے، واقعاً لا دین ہو جائے، جو کہ نہیں ہو سکتا، اگر حقیقی معنی میں لا دین ہو جائے تو انسان اپنی زندگی میں ایک لمحہ، ایک منٹ زندگی نہیں گزار سکتا. کیوں؟ اس لیے نہیں گزار سکتا کیونکہ انسان کو ہر لمحے اور ہر منٹ میں کوئی نہ کوئی کام انجام دینا ہے، اور جب کوئی کام انجام دینا ہے تو وہ کام کسی نظریے کے تحت انجام دینا ہے، اور اس کام کے لیے اگر کوئی نظریہ نہیں ہوگا تو وہ اس کام کو نہیں انجام دے سکتا. جب اس کام کو انجام نہیں دے سکتا تو اس کی زندگی آگے نہیں بڑھ سکتی. एक लम्हा इंसान इस दुनिया में दीन के बगैर नहीं गुजार सकता। अगर कोई शख्स ये कहता है कि मैं लादीन हूँ, इसका मतलब ये तो हो सकता है कि मैं किसी आसमानी दीन को नहीं मानता, इसका मतलब ये तो हो सकता है कि मैं दुनिया में राइज दीन को नहीं मानता। लेकिन अगर वो कहे कि मैं लादीन हूँ यानी मैं किसी भी दीन को नहीं मानता, तो ये मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि इंसान किसी भी निज़ाम और कानून के बगैर इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी को नहीं गुजार सकता। ये हो गई पहली बात हमारी गुफ्तगू का पहला मरहला। दूसरे मरहले में मैं एक मुकदमा आपके सामने पेश करना चाहता हूं और उस मुकदमे से अपनी गुफ्तगू को आगे लेकर बढ़ना चाहता हूं। एक बहस है कि जो बहुत ज्यादा राइज है, अगर आप ह्यूमन साइंसेस के अंदर जाएं और ह्यूमन साइंसेस के अंदर जाने के बाद उलूम इंसानी जिसे कहा जाता है, कि जो हमारे मुआशरे की बुनियाद है, अफसोस के साथ इस बात को कहना पड़ता है कि हमारे मुआशरे के अंदर उलूम इंसानी को, ह्यूमन साइंस को एक पस्त काम बनाकर रख दिया गया, एक पस्त इल्म बनाकर रख दिया गया। अगर आप किसी से कहें कि आप क्या करना चाहते हैं, तो जो सबसे ज़्यादा अच्छे ग्रेड्स वाले हैं वो क्या करेंगे, वो इंजीनियरिंग करेंगे, वो मेडिकल की फील्ड में जाएंगे, और सबसे ज़्यादा जो पस्त और लो ग्रेड्स वाले लोग हैं वो कहाँ पर जाएंगे, वो ह्यूमन साइंसेस के अंदर जाएंगे। और अगर आप मगरिब में जाकर देखें तो वो अपने सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट और सबसे अच्छे ग्रेड्स लेने वाले और सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चों को ह्यूमन साइंस में लेके जाते हैं, क्योंकि ह्यूमन साइंस वो इल्म है कि जो माशरे के लिए किसी रास्ते का, किसी हदफ का तायुन करती है। मेडिकल माशरे को लेकर आगे नहीं बढ़ती, मेडिकल माशरे की एक मुश्किल को हल करती है, और वो मुश्किल क्या है, वो बीमारी है। इंजीनियरिंग माशरे की एक मुश्किल को हल करती है, और वो मुश्किल क्या है कि इंसान को रहने के लिए घर चाहिए या किसी और चीज़ की ज़रूरत है, तो इंजीनियरिंग इंसान की ज़िंदगी के उस मसले को हल करती है, मेडिकल इंसान की ज़िंदगी के एक मसले को हल करती है। लेकिन ह्यूमन साइंस वो है कि जो इंसान के माशरे को एक हदफ की तरफ लेकर आगे बढ़ती है, वो ये बताती है कि माशरे को कैसा होना चाहिए, इंसान की सोच को कैसा होना चाहिए, माशरे में रहने वाले अफराद को कैसा होना चाहिए। अगर मैं इसी बात को दूसरे अल्फाज में बयान करने की कोशिश करूं, तो ह्यूमन साइंस वो है कि जो इंसान को आइडियल कंडीशन के बारे में आगाह करती है कि एक माशरे की आइडियल कंडीशन क्या होनी चाहिए। मेडिकल साइंस और इंजीनियरिंग और दूसरे उलूम इंसान को आइडियल कंडीशन से आगाह नहीं करते, बल्कि मौजूदा कंडीशन में मौजूद मसाइल को हल करते हैं। अगर आप ह्यूमन साइंसेस पर गौर करें और उसके बुनियादी मसाइल की तरफ तवज्जो करें, उसके बिल्कुल बेसिक मसाइल की तरफ जाएं, तो ह्यूमन साइंसेस के बुनियादी और बेसिक मसाले में से एक मसाला यह है कि आया मुआशरे को असालत हासिल है या नहीं है। यानी क्या? यानी यह कि मुआशरा कौन बनाता है। मुआशरा मुख्तलिफ फर्द मिलकर बनाते हैं। आप एक मुआशरे को जहन में रखिए, जब आप एक माशरे को जहन में रखेंगे तो फौरन आपके जहन में क्या आएगा, आपके जहन में ये आएगा कि ग्रुप ऑफ पीपल, एक अफराद का ग्रोह है कि जो अगर जमा हो जाए तो वो माशरा बनाता है। यहीं से एक बहस शुरू हो जाती है कि आया माशरा अफराद से हटकर किसी हकीकत का नाम है या नहीं, इन्हीं अफराद के जमा हो जाने का नाम माशरा है, या माशरा इन अफराद से हटकर किसी हकीकत का नाम है। इसे हम कहते हैं कि मुआशरा आया असालत रखता है, असल है, या मुआशरा एक एतबारी चीज़ है, एक रिलेटिव चीज़ है, कि चंद अफराद अगर जमा हो जाएंगे एक मुकाम पर और अपने लिए कुछ कवानीन तय कर लेंगे तो वो मुआशरा बन जाएगा। यहाँ से ये बहस शुरू होती है। इस बहस में मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि इसमें एक मुफस्सल बहस है और उसमें दलाइल है। जो अफराद इसको मानते हैं उनके पास दलाइल है, जो अफराद इसको नहीं मानते उनके पास दलाइल है। फिर खुद मुआशरे के असल होने से मुराद क्या है, इस पर ख़ुद एक बहस है कि इससे मुराद ये है कि हुकूकी तौर पर यानी कानून के एतबार से मुआशरा असालत रखता है, या फ़लसफ़ी तौर पर मुआशरा असालत रखता है, या हकीकतन मुआशरा असालत रखता है। ये ख़ुद एक मुफस्सल मौजू गुफ्तगू है जिसमें मैं अभी इस वक्त वारिद होना नहीं चाहता। जिस पॉइंट की तरफ मैं यहाँ पर इशारा करना चाहता हूँ और जो मेरे मौजू से मरबूत है, वो ये है कि मुआशरा और इंसान और फ़र्द, इसके दरमियान एक शय है कि जो इजाफी है। एक मरहला ऐसा है कि जो फ़र्द को मुआशरा बनाता है, और वो पॉइंट क्या है कि जो एक फ़र्द को मुआशरा बनाता है, यानी मैं एक फ़र्द हूँ, आप एक फ़र्द हैं, आप में से हर एक एक फ़र्द है, इन तमाम तर अफराद को जो शय माशरा बनाती है वो क्या है? वो शय ये है कि इंसान मुश्तरका तौर पर किसी कानून की छतरी के नीचे आ जाए। ये वो पॉइंट है, ये वो मरहला है कि जो फ़र्द को मुआशरे में तब्दील करता है, एक इंडिविजुअल को सोसाइटी में तब्दील करता है। एक इंडिविजुअल इंडिविजुअल रहता है, एक फ़र्द फ़र्द रहता है, कब तक? उस वक्त तक कि जब तक ये अफराद मिलकर ये बात तय ना कर लें कि आज के बाद से हम इस कानून के तहत अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे। मिसाल के तौर पर आप तसव्वुर कीजिए कि हम और आप एक सोसाइटी में, एक मुआशरे में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जब मैं एक मुआशरे में ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो हमने बहुत सारे कवानीन को अपने ऊपर लागू किया हुआ है। कौन कौन से कवानीन? मिसाल के तौर पर सबसे पहला कानून जो हमने अपने ऊपर लागू किया हुआ है वो एक मज़हब का कानून है कि हम सब एक ख़ास मज़हब को, एक ख़ास सेक्ट को फॉलो करते हैं, और उस सेक्ट के बताए हुए, उस मज़हब के बताए हुए कवानीन पर अमल करते हैं। सबसे पहला कानून हमने इसे अपने ऊपर लागू किया हुआ है, एक मज़हब का कानून। दूसरा कानून, हमने पाकिस्तान के कानून को अपने ऊपर लागू किया हुआ है। यानी क्या मतलब? यानी ये कि मैं चूंकि मकानी एतबार से, मकान के एतबार से पाकिस्तान की सरजमीन पर ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, तो पाकिस्तान के कवानीन पर अमल करना मुझ पर फ़र्ज़ है। मैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ एक पैक्ट करता हूँ, एक मुआहिदा करता हूँ, और मुआहिदा क्या है कि मैं आपके कवानीन को फॉलो करूँगा, और उन कवानीन में से एक कानून यह है कि मैं आपको टैक्स पे करूँगा, और उस टैक्स के बदले में आपने मुझे फ़लाँ 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 सहूलियात फराहम करनी है। ये एक कानून है, इसको मैं फॉलो करता हूँ कि मैं अगर कोई शेय ख़रीद रहा हूँ तो उस पर टैक्स दे रहा हूँ, कोई शेय अगर मेरे पास इनकम हो रही है तो मैं उस पर टैक्स दे रहा हूँ, और इस टैक्स के नतीजे में मैं हुकूमत से क्या चाहता हूँ? मैं हुकूमत से ये चाहता हूँ कि आप पर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। मुझ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि मैं आपके कानून पर अमल करूँ। अगर आपने कहा है मसलन कि यहाँ से ये इस सड़क पर, इस रोड पर ट्रैफिक वन वे होगा तो मैं इसको मानूंगा। आपने अगर कहा है कि घर बनाने से पहले परमिशन लेना ज़रूरी है तो मैं आपसे परमिशन लूँगा। अगर आपने कहा है कि फ़लाँ काम ने इसको इस तरह से अंजाम देना है तो मैं उसे उस तरह से अंजाम दूंगा, और साथ ही मैं आपको कुछ पैसे बतौर टैक्स पे करूंगा, और उस टैक्स के नतीजे में आपने क्या करना है, आपने मुझे ये सहूलियात फराहम करनी है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको टैक्स पे करूंगा तो मेरी जान की हिफाजत आपकी ज़िम्मेदारी है, मेरे माल की हिफाजत आपकी ज़िम्मेदारी है, मुझे कोई नुकसान ना पहुँचाए आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर मैंने टैक्स देकर, परमिशन लेकर घर बनाया है तो उसे कोई नहीं तोड़ेगा, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। ये एक पैक्ट है, ये कानून है कि जिसे मैं कबूल कर रहा हूँ और हुकूमत के साथ एक पैक्ट कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले दीन के कानून को फॉलो कर रहा हूँ, उसके बाद पाकिस्तान के कानून को फॉलो कर रहा हूँ, और आगे बढ़िए मैं कुछ सोशल कवानीन को फॉलो कर रहा हूँ, कुछ मुआशरती कवानीन को फॉलो कर, कुछ ऐसे काम हैं कि जो ना इस्लाम ने उसकी ममानियत की है, इस्लाम ने उसे मना नहीं किया, ना पाकिस्तान के कानून ने उसे मना किया है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं उस काम को अंजाम नहीं देता। क्यों अंजाम नहीं देता? इसलिए अंजाम नहीं देता क्योंकि मैं एक सोसाइटी में ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, और उस सोसाइटी के अंदर कुछ कवानीन ऐसे हैं कि जो जिसे मैंने अपने ऊपर लागू कर लिया है। मिसाल के तौर पर एक सोसाइटी का कानून यह है कि इस सोसाइटी के अंदर, इस ग्रुप ऑफ पीपल के अंदर अगर कोई शादी करेगा तो वो इन्हीं अफराद के घरों में शादी करेगा। ये कानून बहुत से अफराद में, बहुत से ख़ानदानों में, बहुत से मुआशरों में मौजूद होता है कि अगर हम शादी करेंगे तो अपने मुआशरे में या अपनी सोसाइटी में, या ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है कि जिन्होंने मिलकर इस सोसाइटी को तश्कील दिया है, हम इन्हीं में शादी करेंगे। अब ये जो कानून है, ये कानून ना इस्लाम का कानून है, ना पाकिस्तान का कानून है, ना मुल्क का कानून है, बल्कि ये एक सोशल कानून है। सोशल कानून यानी क्या? यानी चंद अफराद ने मिलकर किसी शय को अपने ऊपर लाजिम करार दे दिया है कि आज के बाद से हम सब मिलकर ये पैक्ट करते हैं, ये मुहायदा करते हैं कि हम इन सोशल कवानीन की पाबंदी करेंगे। या कुछ अफराद मिलकर ये तय करते हैं कि हमारे जो मालदार अफराद हैं वो हमारे गरीब अफराद को सपोर्ट करेंगे। या कुछ अफराद मिलकर ये आपस में तय करते हैं, पैक्ट करते हैं मसलन कि हम में से हर एक मिलकर अपने अपनी जो सलाहियतें हैं हमारे पास उन सबको एक जगह पर सर्व करेंगे ताकि एक दूसरों के काम आ सके। ये जितने भी कवानीन हैं ये सोशल कवानीन हैं, सोसाइटी के बनाए हुए कवानीन हैं, हमारे अपने एतबार किए हुए, जाल किए हुए, बनाए हुए कवानीन हैं, इसकी कोई हकीकत नहीं है। इसका मतलब ये, जिस बात को मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ और मैं अपने मौजू को आगे लेकर बढ़ना चाहता हूँ, वो ये है कि जो मुआशरा है, जो दीन है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी मुआशरा उस वक्त तक मुआशरा नहीं बन सकता जब तक वो अपने लिए किसी दीन का इंतखाब ना करे। क्या मतलब? मतलब ये कि एक मुआशरे में मुख्तलिफ अफराद होते हैं, फ़र्द होते हैं, मुख्तलिफ अफराद मिलकर एक मुआशरा तरतीब देते हैं। इस फ़र्द में और इस मुआशरे में फ़र्क क्या है? अगर कोई आपसे कहे कि डिफरेंस क्या है इन अफराद में और इस मुआशरे में, तो आप ये कहेंगे कि इनके दरमियान डिफरेंस ये है कि अफराद ने किसी कानून को यानी किसी दीन को अपने ऊपर नाफिस किया है तो ये मुआशरा बन गए हैं, वरना अफराद अफराद थे, मुआशरा नहीं थे। अफराद कब मुआशरा बनेंगे? अफराद उस वक्त मुआशरा बनेंगे जब अफराद अपने ऊपर किसी दीन को, किसी कानून को, किसी लॉ को अपने ऊपर नाफिस करेंगे कि आज के बाद से हम सब मिलकर ये तय करते हैं, ये पैक्ट करते हैं कि हम इस कानून की पाबंदी करेंगे। बस डिफरेंस क्या है अफराद में और मुआशरे में? अफराद और मुआशरे में डिफरेंस ये है कि ये किसी कानून को फॉलो करने पर मुत्तहिद हो जाएंगे। जब कुछ अफराद किसी कानून को फॉलो करने पर मुत्तहिद हो जाएंगे तो वो मुआशरा बना देंगे। अब दूसरा सवाल यहां से ये इजाद होता है कि जब हम कहते हैं कि इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, के जिस आयत से हमने अपनी गुफ्तगू को शुरू किया था कि दीन या कानून या शरीयत इस्लाम है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि खुदावंद मुताल ये बताना चाहता है कि देखो तुम सब फर्द हो, अगर किसी इज्तिमा की तरफ, किसी मुआशरे की तरफ जाना चाहते हो तो उस मुआशरे को अगर इस्लामी मुआशरा कहना चाहते हो तो इस्लाम वो कानून है कि इस्लाम के कानून पर अमल करने के ज़रिए से तुम अफराद मिलकर एक इस्लामी मुआशरा बना सकते हो। किसी और कानून को फॉलो करने से तुम कोई और मुआशरा तो बना सकते हो, इस्लामी मुआशरा नहीं बना सकते। इस्लामी मुआशरा बनाने के लिए क्या ज़रूरी है? इस्लामी मुआशरा बनाने के लिए ज़रूरी है कि तुम इस्लाम को फॉलो करो। इस्लाम को फॉलो करोगे तो तुम इस्लामी मुआशरा बना सकोगे। अब और आगे बढ़ते हैं, क्यों परवरदिगार मुताल ये कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ मेरे नज़दीक इस्लाम ही हकीकी दीन है, क्यों कह रहा है? अगर आप कुरान मजीद से हट कर और कुरान मजीद की आयत से हट कर इस जुमले को देखें, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कुरान मजीद से हट कर इस आयत को और इस जुमले को देखें, तो आप ये कहेंगे कि ये जुमला दुरुस्त नहीं है। क्यों कहेंगे कि दुरुस्त नहीं है? क्योंकि दुनिया में एक कानून नहीं है, दुनिया में बहुत से कानून हैं, उन कवानीन में से एक कानून इस्लाम है। खुदा क्या कह रहा है? खुदा कह रहा है मेरे नज़दीक इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, मेरे नज़दीक अगर कोई दीन है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम है, सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है। मेरे नज़दीक सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है कि जिसे कानून की हैसियत हासिल है, जिसे एक दीन की हैसियत हासिल है, जिसे किसी लॉ की हैसियत हासिल है, वो क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है। क्यों? जबकि अगर आप दुनिया में देखें तो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम तो दीन नहीं है, बहुत सारे और अदियान मौजूद हैं, बहुत सारे अदियान से हट कर बहुत से और कानून मौजूद हैं कि जिसकी बुनियाद इस्लाम पर नहीं है। कुछ अफराद ने मिलकर अपने लिए कोई कानून बना लिया, हर सोसाइटी के कुछ कवानीन हैं, हर इलाके में रहने वाले के कुछ कवानीन हैं, हर शहर में रहने वालों के कुछ कवानीन हैं, हर मुल्क में रहने वालों के कुछ कवानीन हैं, इसकी बुनियाद इस्लाम पर तो नहीं है। फिर क्यों खुदावंद मुताल कह रहा है कि मेरे नज़दीक अगर कोई चीज़ دین کی حیثیت رکھتی ہے، قانون کی حیثیت رکھتی ہے، تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ اگر ہم تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ کون سا قانون ہے کہ جسے ہم حقیقی معنی میں قانون کہہ سکتے ہیں، جسے ہم دین کہہ سکتے ہیں۔ تو دو خصوصیات ایسی ہیں کہ اگر یہ دو خصوصیات کسی قانون میں ہوں تو حقیقی معنی میں وہ ایک آئیڈیل دین اور آئیڈیل قانون ہو سکتا ہے۔ وہ دو خصوصیات کون سی ہیں؟ پہلی خصوصیت، اس قانون میں کسی خطا کی گنجائش کا نہ ہونا ہے، کسی بھی غلطی کی گنجائش نہ ہو اس قانون میں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ دنیا کے جتنے بھی قوانین ہیں اس میں سے کسی بھی قانون سے متعلق کوئی کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو قانون، یہ جو دین، یہ جو آئین ہم نے بنایا ہے یہ فل اینڈ فائنل ہے، اب اس میں کسی بھی قسم کی کوئی امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، یہ نہیں کہتا۔ جب بھی قانون بنایا جاتا ہے تو ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ قانون ہے، اب تک ہمیں یہ سمجھ میں آیا ہے اور اس میں امینڈمنٹ کا طریقہ کار یہ ہے۔ پاکستان کا قانون بنایا گیا 1973 میں، قانون بنایا گیا اور اسی قانون میں یہ لکھا گیا کہ یہ قانون مکمل قانون نہیں ہے، اس میں امینڈمنٹ کی ضرورت پیش آتی رہے گی۔ اچھا امینڈمنٹ کیسے ہوگی؟ اس کا طریقہ کار بتا دیا گیا کہ اس طرح سے اگر کوئی امینڈمنٹ لائی جائے اور فلاں قومی اسمبلی سے اسے پاس کروا لیا جائے یا جو بھی اس کا طریقہ کار ہے تو یہ امینڈمنٹ ہو جائے گی قانون میں۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ یہ قانون مکمل ہے، اس میں کسی بھی قسم کی امینڈمنٹ کی، اسے تبدیل کرنے کی، اس میں کسی بھی قسم کے ارتقاء کی، کمال کی کوئی گنجائش موجود نہیں۔ کبھی کوئی یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا، بلکہ ہمیشہ اس کے برعکس دعویٰ کرتے ہیں، اس کے اپوزٹ دعویٰ کرتے ہیں۔ کیا دعویٰ کرتے ہیں؟ کہ اس میں غلطیاں ہوں گی، اس میں امینڈمنٹ کی ضرورت ہوگی، اس میں مزید اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہوگی، اور کیسے بہتر بنایا جائے گا؟ اسے ایسے میں بہتر بنایا جائے گا۔ اگر ہم کسی سے کہیں کہ دنیا کا قانون بنانے والوں سے کہیں آپ بتائیے دنیا کا آئیڈیل قانون کون سا ہے، تو وہ کہے گا دنیا کا آئیڈیل قانون وہ قانون ہے کہ جس میں کسی بھی قسم کی غلطی کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ جہاں بھی غلطی کی گنجائش رہے گی وہ قانون، ہم اسے معاشرے میں مجازی طور پر قانون تو کہہ سکتے ہیں لیکن حقیقتاً وہ قانون قانون نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ حقیقتاً وہ قانون قانون نہیں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی علت کیا ہے؟ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ اس لیے وہ قانون نہیں ہے کیونکہ قانون کو معیار کی حیثیت حاصل ہے، قانون کو معیار کی حیثیت حاصل ہے۔ ایک مثال میں دینا چاہتا ہوں تاکہ یہ بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں، مشکل بات ہے، آسان ہو جائے گی۔ آج کل ہم میں سے ہر ایک بازار میں جاتا ہے اور فروٹ خریدنے جاتا ہے، سبزی خریدنے جاتا ہے، کوئی بھی شے خریدنے کے لیے جاتا ہے۔ جب ہم جاتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں کہ آپ مجھے، بطور مثال کہہ رہا ہوں، کہ 2 کلو پھل دے دیجئے، 2 کلو پھل دے دیجئے۔ اب جب آپ نے اسے کہا کہ مجھے 2 کلو پھل دے دیجئے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ ترازو کے ایک طرف 2 کلو وزن رکھے گا اور دوسری طرف پھل رکھنا شروع کرے گا، اور جب پھل ڈالتا چلا جائے گا اس وقت تک کہ جب تک یہ پھل 2 کلو کے مساوی اور برابر ہو جائیں۔ جیسے ہی وہ ترازو یہ دکھائے گا کہ 2 کلو کے برابر ہو گئے ہیں، پھل مساوی ہو گئے ہیں، تو وہ کہے گا یہ لیجیے آپ کے 2 کلو پھل اور اس کے پیسے مجھے دے دیجیے۔ اس ترازو کو اگر آپ دیکھیے تھوڑی دیر کے لیے، تو اس ترازو میں قانون کی حیثیت کس کو حاصل ہے؟ اس ترازو میں قانون کی حیثیت کس شے کو حاصل ہے؟ اس ترازو میں جو 2 کلو کا وزن رکھا جا رہا ہے، اس طرف اسے قانون کی حیثیت حاصل ہے، یعنی معیار کی حیثیت حاصل ہے، یعنی یہ اسٹینڈرڈ ہے، اسٹینڈرڈ۔ اس اسٹینڈرڈ پر جب پھل پورے اتر جائیں گے تو وہ 2 کلو ہو جائیں گے۔ یہ 2 کلو کا جو وزن ہے یہ کیا ہے؟ یہ معیار ہے، یہ اسٹینڈرڈ ہے، یہ قانون ہے، یہ دین ہے، کہ اس دین کی بنیاد پر ہر ایک کو پرکھا جائے گا۔ اگر ہم نے 2 کلو کا معیار رکھ دیا تو اب 2 کلو کب 2 کلو ہوگا؟ اس وقت 2 کلو ہوگا کہ جب اس کے برابر ہو جائے گا۔ یہ مثال اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی ہو۔ اب آپ تصور کیجئے کہ کوئی آ کر یہ کہے کہ آج یہ 2 کلو ہے، کل ہم نیا وزن لا کر دیں گے وہ 2 کلو ہوگا، پرسوں ہم ایک اور نیا وزن لا کر دیں گے وہ 2 کلو ہوگا۔ ہو سکتا ہے اس 2 کلو کے وزن میں کسی امینڈمنٹ کی گنجائش ہو، ہو سکتا ہے یہ 2 کلو نہ ہو، 1 کلو 800 گرام ہو، ہو سکتا ہے یہ 2 کلو نہ ہو، 2 کلو 200 گرام ہو۔ تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ معیار صحیح معیار نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب معیار صحیح نہیں ہوگا، جب یہ نہیں پتا کہ حقیقی معنی میں یہ 2 کلو کا وزن ہے یا نہیں، تو اس کی بنیاد پر میں فیصلہ کیسے کروں، اس کی بنیاد پر میں کیسے لوگوں کو 2 کلو ناپ کر دوں جب یہ نہیں پتا کہ یہ آج 2 کلو ہے کل نہیں ہوگا، اب نہیں پتا یہ 2 کلو ہے یا نہیں ہے۔ اسی لیے دنیا میں جو قوانین بنائے جاتے ہیں، پروردگار متعال یہ کہہ رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، میرے نزدیک اگر کوئی قانون ہے، اگر کوئی دین ہے، تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہہ رہا ہے کہ دنیا میں بنائے ہوئے قانون اس وزن کی طرح سے ہے کہ جس کے بارے میں نہیں معلوم کہ 2 کلو ہے یا نہیں ہے۔ خود وہ وزن دینے والا یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں امینڈمنٹ کی گنجائش موجود ہے، اسے بہتر بنانے کی گنجائش موجود ہے، اس میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی خطا ہو سکتی ہے، لیکن پروردگار متعال یہ کہہ رہا ہے کہ میں جو وزن دے رہا ہوں، میں جو معیار دے رہا ہوں، میں جو ملاک دے رہا ہوں، میں جو اسٹینڈرڈ فراہم کر رہا ہوں، اس اسٹینڈرڈ کے مطابق کسی بھی صورت اس میں غلطی کی، کسی خطا کی کوئی گنجائش باقی نہیں۔ تو قانون کی سب سے پہلی خصوصیت کیا ہے؟ قانون کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ قانون میں کسی بھی قسم کی غلطی کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے دنیا کے تمام تر قوانین، تمام تر آئین، تمام تر ادیان، اسے ہم مجازی طور پر ویسے ہی قانون کہہ تو سکتے ہیں، لیکن وہ حقیقی معنی میں قانون نہیں ہے، کیونکہ قانون کو معیار کی حیثیت حاصل ہوتی ہے اور معیار کبھی تبدیل نہیں ہوتا۔ اگر معیار تبدیل ہوتا رہے گا، اسٹینڈرڈ تبدیل ہوتا رہے گا، تو پھر آپ اس اسٹینڈرڈ کی بنیاد پر کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں دے سکتے۔ اسٹینڈرڈ ہمیشہ سیم رہنا چاہیے۔ اسٹینڈرڈ سیم کب رہے گا؟ جب اسٹینڈرڈ اپنے کمال تک پہنچ چکا ہو اور اس میں مزید بہتری کی کوئی گنجائش باقی نہ ہو، کسی غلطی کی کوئی گنجائش باقی نہ ہو، کسی خطا کی کوئی گنجائش باقی نہ ہو۔ اس لیے پروردگار کہہ رہا ہے کہ دنیا کے جتنے بھی قوانین ہیں اسے تم اپنی نظر میں قانون کہتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن حقیقی معنی میں اگر کوئی قانون ہے، کوئی دین ہے، کوئی آئین ہے، تو وہ اسلام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس کی طرف سے آیا ہے کہ جس کے یہاں پر خطا نہیں پائی جاتی۔ چونکہ پروردگار کے یہاں خطا نہیں پائی جاتی، اس لیے اس کے بتائے ہوئے آئین اور قانون میں کوئی خطا نہیں پائی جاتی، اور جب اس کے آئین اور قانون میں کوئی خطا نہیں پائی جاتی، تو اب اس آئین اور اس قانون کو حق حاصل ہے کہ اسے معیار قرار دیا جائے اور باقی سب کو اس معیار کے تحت اور اس اسٹینڈرڈ کے تحت پرکھا جائے۔ سب سے پہلی خصوصیت۔ دوسری خصوصیت کیا ہے؟ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ قانون بطور ایک قانون فائدہ مند نہیں ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ قانون بطور ایک قانون فائدہ مند نہیں ہے۔ کیوں قانون بطور ایک قانون فائدہ مند نہیں ہے؟ کیونکہ قانون مقصد نہیں ہے، قانون وسیلہ ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ اگر میں گھر سے نکلتا ہوں اور مجھے بطور مثال مسجد شاہ خراسان آنا ہے، تو میں ایک راستے کا انتخاب کرتا ہوں اپنے گھر سے مسجد شاہ خراسان تک پہنچنے کے لیے۔ اب یہ جو راستہ ہے، یہ جو طریق ہے، یہ جو سڑک ہے، یہ میرا ہدف نہیں ہے، بلکہ یہ وسیلہ ہے۔ کیا کرنے کا وسیلہ ہے؟ مسجد شاہ خراسان تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ اس وسیلے کو صرف اور صرف میں استعمال کر رہا ہوں اپنے ہدف تک پہنچنے کے لیے۔ اگر یہ وسیلہ نہ ہو تو میں اپنے ہدف تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ وسیلہ ہے میرے ہدف تک پہنچنے کے لیے۔ قانون ہدف نہیں ہے، قانون وسیلہ ہے۔ قانون اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ ایک منظم معاشرے کی بنیاد رکھی جا سکے۔ اس قانون کو وسیلہ قرار دیا جاتا ہے اس معاشرے تک، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک آئیڈیل معاشرہ، اس آئیڈیل معاشرے تک پہنچنے کے لیے اس قانون کو ایک وسیلہ قرار دیا جاتا ہے۔ اس لیے قانون ہدف نہیں ہے، قانون وسیلہ ہے۔ اچھا، جب قانون وسیلہ ہے تو ہدف کیا ہے؟ قانون کب ہدف تک پہنچائے گا؟ قانون کب ہدف تک پہنچائے گا؟ ہدف کیا ہے؟ ایک آئیڈیل معاشرے کا قیام۔ उस आइडियल माशरे का क़याम यानी क्या, यानी परवरदिगार मुताल के बताए हुए उसूलों के तहत जो माशरा बना हो उसका क़याम। इस माशरे के क़याम के लिए परवरदिगार मुताल ने एक रास्ता मुअय्यन किया, एक कानून मुअय्यन किया कि ये इस्लाम का कानून है, अगर तमाम तर अफराद मुआशरा इस इस्लाम पर, इस कानून पर, इस आइन पर अमल करेंगे तो वो ये मुआशरा बनाएंगे जो मेरे नज़दीक एक मतलूब मुआशरा है, मैं इस मुआशरे को चाहता हूँ। बस कानून कब हदफ तक पहुँचाएगा? कानून उस वक्त हदफ तक पहुँचाएगा कि जब उस पर अमल किया जाएगा। बस पहली खसूसियत क्या हो गई, दो खसूसियात आज मैं बयान करूंगा और उसके बाद अपने मौजू को समेट कर खुलासा आपके सामने पेश करूंगा ताकि मैं अपने दामन वक्त में अपनी गुफ्तगू को तमाम कर सकूं। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बस आज की गुफ्तगू की आखिरी बात, दूसरी खसूसियत क्या होनी चाहिए कानून की? दूसरी खसूसियत यह होनी चाहिए किसी भी कानून की, पहली खसूसियत क्या थी? पहली खसूसियत यह थी कि उसके अंदर किसी भी किस्म की गलती की, ख़ता की कोई गुंजाइश बाकी ना हो। क्यों? क्योंकि कानून मेयार है। अगर मेयार में गलती की गुंजाइश बाकी रहेगी तो इस मेयार की बुनियाद पर किसी और को कैसे सही और गलत करार दिया जा सकता है, एक बात। दूसरी खसूसियत क्या होनी चाहिए? दूसरी खसूसियत कानून की यह है कि कानून प्रैक्टिकल होना चाहिए, कोई ऐसी फोर्स होनी चाहिए, कोई ऐसा किसी ऐसे की ज़रूरत है कि जो इस कानून को अमली कर कर दिखाए, क्योंकि इस कानून की बेजाते ही कोई हैसियत नहीं है। कानून की हैसियत कब है? कि जब कानून पर अमल किया जाए, क्योंकि कानून पर अमल करने के ज़रिए से एक मुआशरा वजूद में आएगा। जो हमारा हदफ है वो कानून के होने से, अगर कोई कहे कि मैं घर पर बैठा हुआ हूँ और मेरे घर से मस्जिद शाह खुरासान तक जाने के लिए रास्ता मौजूद है, तो इस रास्ते का मौजूद होना इसे मस्जिद तक नहीं पहुँचाएगा, इस रास्ते पर इसे चलना पड़ेगा, इस रास्ते पर इसे पैर कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे, तब उस अपने हदफ तक पहुंचेगा, तब अपने उस हदफ को, उस मकसद को हासिल कर पाएगा। बस इसका मतलब कि सिर्फ और सिर्फ रास्ते का होना काफ़ी नहीं है, कानून का होना काफ़ी नहीं है, कानून पर अमल करना ज़रूरी है। अच्छा, अब कानून पर अमल करना ज़रूरी है तो कानून पर अमल कौन कराएगा? कानून पर अमल कौन कराएगा? बस कोई ऐसी फोर्स होनी चाहिए, कोई ऐसी अट्रैक्शन होनी चाहिए कि जो इंसान को इस कानून पर अमल करने पर मजबूर करे, इस कानून पर अमल करने पर मजबूर करे। परवरदिगार मुताल कह रहा है कि इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, मेरे नज़दीक अगर कोई दीन है तो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है। इसलिए क्योंकि पहली बात तो यह है कि इस इस्लाम में किसी भी किस्म की गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, बस इसकी बुनियाद पर तुम दूसरों को परख सकते हो, दूसरों को सही और गलत करार दे सकते हो। दूसरी बात यह है कि दुनिया में कोई भी ऐसी फोर्स नहीं है मेरे अलावा जो दुनिया के तमाम तर लोगों को किसी कानून पर अमल करवाने के लिए मजबूर कर सके सिवाय मेरे। क्यों? मिसाल सुन लीजिए, अगर मैं किसी पाकिस्तान के कानून को फॉलो करता हूँ और अगर नहीं करना चाहता तो क्या करूँ? चले जाइए पाकिस्तान से। अगर मैं किसी सोसाइटी में रहता हूँ, सोसाइटी के कानून को फॉलो नहीं करना चाहता, चले जाइए सोसाइटी से। तमाम तर जगहों पर मुझे ये सोसाइटी मजबूर नहीं कर सकती कि आप चाहे इस सोसाइटी में रहें, चाहे इस सोसाइटी से चले जाएं, आपने कानून फॉलो करना है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मुझे मजबूर नहीं कर सकती कि चाहे आप पाकिस्तान में रहें, चाहे बाहर चले जाएं, आपने ये कानून फॉलो करना है। परवरदिगार मुताल लेकर आए कि हम दुआए कुमैल में जो जुमला पढ़ते हैं, वला युमकिनुल फरार मिन हुकूमतिक, ए परवरदिगार तेरी हुकूमत से फरार मुमकिन नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि परवरदिगार तेरी कुदरत इतनी वसी है कि तेरे बताए हुए कानून पर अगर कोई अमल न करे तो हतमन वो किसी न किसी जगह पर जाकर तेरे सामने उसे आना है, क्योंकि तेरा कानून किसी एक मकान से और किसी एक जमान से मुख्तस नहीं है बल्कि तमाम तर जमानों के लिए है और तमाम तर मकानों के लिए। बस दूसरी खसूसियत कानून की क्या होनी चाहिए? दूसरी खसूसियत कानून की ये होनी चाहिए कि कानून पर अमल करवाने के लिए किसी फोर्स की ज़रूरत है। और परवरदिगार मुताल ने पूरा एक सिस्टम बनाया है कि जिसे हम माद कहते हैं, कि अगर तुमने दुनिया में, इसीलिए आप देखिए कि इस वक्त दुनिया के तमाम तर मुआशरे इस बात को कबूल कर चुके हैं कि हम मटेरियल बुनियादों के ऊपर और मादी बुनियादों के ऊपर किसी कानून को नहीं चला सकते। आप जितने भी सीसीटीवी कैमरास लगवा लीजिए दुनिया के अंदर, तमाम दर वो जगह के जहां पर जितने भी सीसीटीवी कैमरास लगाए जाते हैं वहां पर चोरी की गुंजाइश मौजूद होती है। क्यों मौजूद होती है? क्योंकि ये इंसान को फोर्स नहीं कर सकते इस बात पर कि आप चोरी ना कीजिए। क्यों? क्योंकि या तो वो कोई ना कोई ऐसा हल निकाल लेता है कि कैमरे की आंख से बच जाता है, या अगर कैमरे की आंख में आ भी जाए तो चोरी करके भाग जाएगा, ये कैमरे जिसने लगाए हैं उसकी हुकूमत से बाहर चला जाए, बस इसे कोई फोर्स नहीं कर सकता। आप मादी तरीकों से इंसान को 100% नहीं बचा सकते। इसके लिए जरूरी है कि आप मादी तरीकों से बालातर होकर मानवी तरीकों की तरफ जाएं। इसीलिए आज अगर आप जाएं और मगरिब में इस बात को देखें तो जो रिसर्च करने वाले हैं वो रिसर्च कर रहे हैं कि इस वक्त दुनिया सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की तलाश में है तो वो स्पिरिचुअलिटी की तलाश में, वो मानवियत की तलाश में। क्यों मानवियत की तलाश में है? क्योंकि मादियत से उसके मसाइल हल नहीं हो रहे। कैमरे लगाने के बावजूद भी चोरी हो रही, समझ लीजिए अगर हम सीसीटीवी कैमरास लगा देंगे हम चोरी को रोक लेंगे, लेकिन उन्हें ये बात समझ में आई है कि जितने भी आप मादी वसाइल को फैलाते चले जाएं बिलाखिरे गुंजाइश मौजूद है, और वो गुंजाइश ये है कि आपके इन कैमरास की बुनियाद पर आपकी हुकूमत के अंदर फैसला सुनाया जा सकता है, आपकी हुकूमत के बाहर फैसला नहीं सुनाया जा सकता। क्योंकि मादी एतबार से आपकी हुकूमत किसी एक मकान तक महदूद है। अगर अमेरिका की हुकूमत है तो वो अमेरिका तक महदूद है, अगर पाकिस्तान की हुकूमत है तो पाकिस्तान तक महदूद है। इस कैमरे की बुनियाद पर, इसके रिजल्ट की बुनियाद पर, इसकी वीडियो की बुनियाद पर सिर्फ इसी जगह पर फैसला सुनाया जा सकता है। अगर वो आपके हुकूमत से और आपका जो महदूदियत है आपके कानून की उससे बाहर चला जाए तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते। बस आपको मादियत से बालतर मानवियत में कदम रखना पड़ेगा। परवरदिगार मुताल ये कह रहा है कि दुनिया में अगर कोई कानून है कि जिसके पीछे मानवियत की बेस मौजूद है वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है। क्यों? इसलिए क्योंकि इस्लाम इस दुनिया में सजा देने की बात नहीं करता, बल्कि इस्लाम के पास मादियत से बढ़कर फरा मादियत, मादियत से आगे एक मानवियत का जजा और सजा का निज़ाम मौजूद है। इस्लाम ये कहता है अगर चोरी की इस दुनिया में हाथ काटे जाएंगे, अगर इस दुनिया में बच गए तो मरने के बाद हमारे पास एक सिस्टम मौजूद है कि जहां पर तुम्हें जजा और सजा दी जाए, और ये सिस्टम सिवाय इस्लाम के किसी और के पास मौजूद। इसलिए कोई भी कानून उस वक्त तक कानून हो नहीं सकता, कोई भी दीन उस वक्त तक दीन हो नहीं सकता जब तक उस पर अमल करने पर इंसान मजबूर ना हो जाए। और उसके मजबूर होने के लिए क्या ज़रूरी है? ज़रूरी यह है कि इंसान मादियत से बालातर होकर मानवियत में कदम रखे, और मादियत से बालातर होकर मानवियत पर अपने उस कानून को की बुनियाद, अपने कानून की बुनियाद मानवियत पर रखे। क्योंकि मादियत के अंदर कहीं ना कहीं ये गुंजाइश मौजूद रहती है कि इंसान फरार कर जाए। परवरदिगार ये कह रहा है अगर हमारे इस्लाम के मादी कवानीन से, अगर चोरी के लिए हमने मादी सज़ा ये रखी है कि उसके हाथ काटे जाएंगे, अगर इस मादी सज़ा से बच भी गए तो ये इख्तिताम नहीं है। दुनिया के तमाम तर कवानीन का ये इख्तिताम है कि दुनिया में सज़ा मिल गई तो मिल गई, नहीं मिली तो नहीं मिली। परवरदिगार कहता है हमारे निज़ाम का ये एंड नहीं है, ये स्टार्ट है, ये आगाज़ है। इख्तिताम क्या है? इख्तिताम ये है कि मरना तुम सब ने है, और मरने के बाद हम बताएंगे कि तुमने क्या किया है। बस परवरदिगार मुताल कह रहा है कि इन दीन इंदल्लाह इस्लाम। क्यों? क्योंकि ना इस्लाम में किसी किस्म की गलती की कोई गुंजाइश मौजूद है, और ना अल्लाह के बताए हुए कानून से फरार मुमकिन है। इन दो बुनियादों पर दुनिया के तमाम तर कवानीन इस काबिल हैं कि उसे कचरे के सुपुर्द कर दिया जाए, और इस्लाम इस काबिल है कि उसे सरों पर सजाया जाए और उसे इंसान अपने लिए दीन और कानून की हैसियत दे। क्यों? क्योंकि दुनिया के तमाम तर कवानीन में गलती की गुंजाइश मौजूद है, दुनिया के तमाम तर कवानीन पर अमल करवाना, उसको लागू करना लागू किया जा सकता है, लेकिन बिलाखिरे उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई ऐसे जगह मौजूद रहेंगी कि जहाँ से उस कानून पर अमल ना करने वाला फरार कर सके। लेकिन इस्लाम में ना अमल ना करने वाला फरार कर सकता है और ना इसमें किसी गलती की गुंजाइश मौजूद है। तो दीन शनासी के पहले मरहले में हमने इस बात को आपके सामने बयान करने की कोशिश की है कि दीन शनासी के लिए सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि हम समझें दीन क्या है, और हकीकी माना में दीन ये है कि उसके अंदर दो चीज़ें पाई जाती हों, उसके अंदर किसी भी किस्म की गलती की गुंजाइश ना हो, और उस पर अमल करवाना सबके लिए आसान हो, सबके लिए ज़रूरी हो उस पर अमल करना। बस इन दो खसूसियात की बुनियाद पर परवरदिगार मुताल ये कह रहा है कि अगर कोई दीन है, अगर कोई कानून है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम। अब जब हम इस बात को कबूल कर चुके हैं अकली एतबार से, तो अब अगले मरहले में अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे अगर मौका रहा, वरना यहीं पर अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम करते हैं। परवरदिगार मुताल से दुआ है कि परवरदिगार बहक मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम हमारी इस कलील से इबादत को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए, हम सबको हज़रत इमाम ज़माना के आवान व अंसार में से करार दे, हज़रत के ज़हूर में तआजील फरमाए। बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।